نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبق نمبر 146، آیت نمبر 66 سے 77، سورة بنی اسرائیل. لیسن نمبر 146، آیت نمبر 66-77. آیات پہ جانے سے پہلے آیتوں کا خلاصہ. پچھلے سبق میں ہم نے شیطان کے ہتھ کنڈوں کی بات دیکھی تھی کہ شیطان کس طرح ہمارا دشمن ہے اور اس کی نظر ہمارے مال اور ہماری اولادوں پہ ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے ہمارے سامنے وہ خوبصورت کر کے دکھاتا ہے کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، اور اس دنیا کو ہمارے لیے اتنا اہم کر دیتا ہے کہ بہت بڑی آخرت ہمارے پیچھے جاتی ہے. یہاں سے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کے کچھ دلائل ہیں. پیچھے ہم نے پڑھا تھا، کفا بی ربی کا وکیلا، تیرا رب تیرے کام بنانے کے لیے کافی ہے. تو آیت 66 سے پھر اللہ تعالیٰ دلائل دیں گے کہ آؤ دیکھو اس دنیا کے کام میں کس طرح سے کر رہا ہوں، تو کیا میں تمہارے کام نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریفوں کو جاننے کے بعد جو اگلی چیز ہم دیکھیں گے آج کے سبق میں، وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان اور اس کی معرفت دکھ کے وقت میں آسان ہو جاتی ہے. جب انسان کسی بھی غم میں ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے تعارف زیادہ اچھا ہوتا ہے، لیکن جو ہی اس کی زندگی خوشیوں میں ڈھلتی ہے تو اس وقت پھر اس کی تبدیلیاں زندگی میں جاتی ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے. اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دھمکی ہے کہ اگر ایک خوشی ملنے پر تم منہ پھیر گئے تو کیا دوبارہ کبھی زندگی میں تمہیں ہم سے واسطہ نہیں پڑے گا. اگلا ٹاپک اس میں آئے گا کہ بنی آدم کو عزت دی، اس سے کیا مراد ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ کیا واقعی انسان قابل عزت ہستی ہے. اور پھر اس کے بعد کچھ بات نامہ اعمال کی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں بھی نامہ اعمال کا ذکر تھا، یہاں بھی ہے، اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا. گویا کہ ایک شعور کی زندگی بسر کرنے کو بتایا جا رہا ہے. پھر اگلا ٹاپک ہے کہ جو اس دنیا میں ہدایت سے اندھا رہا آخرت میں جنت سے دور رہے گا، اللہ اس کو جنت کا راستہ دکھائیں گے ہی نہیں. اور پھر دشمنوں کی سازشیں کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوششیں کرتے تھے، اور اگر کوئی کسی کے کہنے پر اس راستے کو چھوڑ جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی کتنی قابل رحم ہو جاتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اب آیتوں کو ساتھ لے کر. بہت آسان سبق ہے، اور وہی بات ہے کہ دماغ پہ لینے کی بجائے دل پہ لینے والا سبق ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اس سبق کو پڑھنے کے دوران ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات میں جو نشانی ہے اس پہ غور و فکر کرنا آسان ہو جائے. آیت نمبر 66، ربکم الذی یسجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ، تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو سمندر میں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. انہ کان بکم رحیما، یقیناً وہ تم پر بہت ہی رحیم ہے. اگر ہم نے اپنی کھلی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی کوئی انسان یہ مان ہی نہیں سکتا تھا کہ پانی، جو اتنی نرم چیز ہے، اس کے اوپر منو ٹنوں وزن والی ایک کشتی تیر سکتی ہے. وہی پانی جس کے اوپر اگر ہم ایک سوئی رکھیں تو وہ اس میں ڈوب جاتی ہے، لیکن ایک کشتی نہیں ڈوبتی. یہ کس کا فیصلہ ہے؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز کو جو کہتے وہ چیز ویسے ہی ہو جاتی ہے. کن اور فیکون کا مالک ہے. کشتیوں کا پانی میں چلنا جتنا ناممکن ہے، اتنا ہی اس کائنات میں رہتے ہوئے اس کی نشانیوں پہ غور نہ کر کے جنت میں جانا ناممکن ہے. ہم سوچتے ہیں کہ نماز روزے سے ہی اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوگا، حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو اس کائنات میں 24 گھنٹے کا تدبر، غور و فکر، کئی جگہ ناممکنات کو ممکن میں بدلتا دیکھنا ہم سب کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. پیچھے کہا کہ توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے، اب کہا جا رہا ہے تمہارا حقیقی رب وہ ہے. बताया क्या जा रहा है कि जो साथ इतने नामुमकिन कामों को मुमकिन बना रही है, फिर तुम उस पर एतमाद करो, तुम्हारा भरोसा उस पर हो, इसी से रहनुमाई लो, इसी से तौफीक मांगो। और जिसने अपने रब पे नज़रें लगा ली, फिर उसको किसी और ज़ात की ज़रूरत नहीं रहेगी। कितनी बड़ी आजमाइश ज़िंदगी में क्यों ना आ जाए, जिसकी नज़रें रब पे होती हैं वो निकल जाता है। लगता है ऐसे कि ये मुश्किल जानी कोई नहीं, लेकिन ऐसे जाती है जैसे आटे में से बाल, शर्त एक है कि नज़रें अल्लाह ताला पर हों। यहाँ जो लफ्ज़ है युस जी, इसका रूट ज़ा जीम वाव है, अजा युस जी से है, मस्तर है अजा। इसका मतलब होता है नरमी से चलाना, हवाओं को हांकना, बादलों को चलाना। और यहाँ मिन फदली ही से मुराद फजल यानी माल, दुनिया का। बताया गया कि दुनिया का भी माल कमाओ, बुरी बात नहीं है। इस जाउन कहते हैं अरबी में, काम आसान होने की वजह से पूरा हो जाना। आप सोच रहे होंगे कि कश्ती का चलना और हवाओं का चलना, ये दो चीज़ों का इधर इकट्ठा जिक्र क्यों किया? तो शायद आपको ना पता हो कि अगर हवाएं रुक जाएं तो कश्तियां चलना रुक जाएंगी। ये जो कश्तियां चलती हैं ना, ये हवाओं के रुख पे चलती हैं, चाहे ऑपोजिट हो या दूसरी हो, जोर ज़्यादा लग जाता है, लेकिन अगर कश्ती रुक जाए तो अल्लाह ताला की रहमत से फिर एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा भी नहीं सकता। अगर ऊपर से थोड़ा सा इस ताल्लुक को जोड़ना हो तो थोड़ा समझ लीजिए कि इब्लीस पहले दिन से आदम की नस्ल के पीछे पड़ा हुआ है, ताकि इसको आरज़ुओं और तमन्नाओं और झूठे वादों के दाम में फांस कर राह रास्त से हटा दे, और ये साबित कर दे कि वो इस बुजुर्गी का मुस्तक नहीं है जो इसे अल्लाह ताला ने दी। अब ऐसे वक्त में जो चीज़ बंदे की मदद कर सकती है शैतान के मुकाबले में, वो रब की बंदगी है। जितना अपने आप को हैंड्स फ्री करते जाएंगे ना, उतना अल्लाह की मदद आपके सामने ज़्यादा आती रहेगी। लिहाजा इन सारी बातों को सुनते वक्त चुपके चुपके अपने लिए दुआएं करें। क्या मेरे मालिक, तो इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, तो मेरे छोटे छोटे कामों की तेरे लिए क्या हैसियत है, तू मेरी इसमें मदद फरमा। और आखिर में देखिए कि हकीकत है कि तुम्हारा रब तुम्हारे हाल पर बड़ा मेहरबान है। कैसी बात कह दी, ऐसे नहीं लगता कि जैसे हर वक्त तो उसकी रहमत ही होती है, कभी कभी पकड़ आती है। आप देखिए कि हम सेहतमंद तो अक्सर रहते हैं ना, बीमार तो कभी कभी होते हैं, भूख तो कभी सहनी पड़ती है, पेट तो अक्सर ही भरा रहता है, कभी कभी कोई गम कोई सदमा आता है, हर वक्त तो आफियत ही होती है, ये अल्लाह ताला का रहम है। और दूसरा यहाँ रहम अगर आयत के साथ देखें तो कश्तियों में बैठकर वापस निकल आना, ये अल्लाह का रहम है। और इसी तरह अब इस रहम का ताल्लुक अगले हिस्से से भी आयत के, कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो ये उसका रहम है तुम पर कि तुम्हें उसने इतना कुछ जो दुनिया में दिया था, ये सारी चीज़ों से बचकर तुम समंदरों से खैर व आफियत के साथ गुजरते हो। लेकिन इंसान का रवैया क्या, अब अगली आयत को साथ लेके देखेंगे, आयत 67। وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ, और जब तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है समंदर में, मसलन कश्ती तूफान में गिर जाती है, मौत के साए सामने दिखने लगते हैं, हवाएं तेज चलने लगती हैं, तूफान आ जाता है, डूबने का खौफ है, कश्तियां डोलने लगती हैं, कोई भी तकलीफ सोच सकते हैं आप, ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ, गुम हो जाते हैं वो सब जिन्हें तुम पुकारते हो सिवाय उस एक अल्लाह के। कितनी बड़ी हकीकत है, उस वक्त तुम्हें अपने माबूदों में से कोई याद नहीं रहता। आम हालात में जिन्हें तुम अपना मददगार समझते थे, इस दुख के वक्त में वो तुम्हारी मदद कैसे करें, नहीं कर सकते, वो कर ही नहीं सकते। लेकिन फलम्मा नज्जाकुम मिनल बर्री, फिर जब वो तुम्हें बचा कर ले आता है खुशकी की तरफ, तो आरत तुम चौड़े हो जाते हो, मुंह फुला लेते हो। ये जो लफ्ज़ है ना आरदा, अरद कहते हैं चिक को, ये जो चिक्स होते हैं ना गाल। अब आप मुझे सामने से देखेंगे तो हो सकता है आपको मेरा फेस पतला लगे, लेकिन अगर मैं साइड से दिखाऊं आपको तो मेरा फेस चौड़ा दिखेगा, साइड पोज हमेशा चौड़ा होता है। तो आरदा में एक तो क्या है कि यूं बस जहां बैठे थे हूं करके मुंह पीछे करते हो, और दूसरा जो टिपिकल हमारे उर्दू में लफ्ज है कि तुम चौड़े होने लगते हो। दोनों में एक ही चीज़ है, जब कोई मुंह फेरता है तो उसका मुंह आम से चौड़ा दिखने लगता है, मुराद यह कि तुम मुंह मोड़ लेते हो। फिर तुम्हारे माल और तुम्हारा वक्त गैरों के लिए लगता है, फिर तुम शैतान को अपने माल में इस तरह से शरीक कर लेते हो कि तुम लगता ही नहीं कि इसमें तुम्हारा अल्लाह ताला का कोई हिस्सा भी था। क्या सच बताएं हकीकत में ऐसा इंसान का रवैया नहीं है? वकान अल इंसान कफूरा, इंसान बड़ा ही ना शुक्रा पैदा हुआ। आप देखिए कि खुशियों में कम लोगों को रब याद रहता है और दुख में कम लोगों को भूलता है। ये भी खुशकिस्मती है कि किसी को दुख में रब याद रहे। कुछ लोग तो दुख में जब जाते हैं ना, जब डिप्रेशन में जाते हैं, तो वो ये सोच लेते हैं कि नउस बिल्ला, जिस तरह अब हम कुछ नहीं कर सकते, इस तरह हमारा रब भी कुछ नहीं कर सकता। तो लिहाजा ऐसे वक्त में जब कोई इंसान अल्लाह से दूर होता है ना, तो समझ ले कि उसने तो अपने ऊपर हिदायत के रास्ते सारे बंद कर लिए। कोई एक वक्त अपनी ज़िंदगी का याद करें यहाँ बैठकर, जब आप खुशी में बहक कर रब को भूल गई, चाहे वो वक्ती तौर पे हो, एक इंस्टेंस भी होता है, एक मिनट, एक सेकंड, एक लम्हे की भूल, वो कोई एक नमाज भी हो सकती है। बल्कि आप सब सोचिए, मेरी कोई नमाज जो मेरी किसी खुशी की नज़र हो गई, किसी शादी में थी तो वजू नहीं करना था, दावत में थी तो जाना नहीं था, मेहमान आ गए तो खिलाती रही पिलाती रही, तो इस आयत को सोच ले। हम जब इन आयतों को पढ़ते हैं, हम कहते हैं ये मुशरिकीन मक्का बड़े बड़े गुनाह करते थे, लेकिन कभी हम अपनी ज़िंदगियों में तो देखें, मुझे तो ऐसे लगता है कि ईद के दिन भी नमाज मुश्किल हो जाती है, ईद की दावतें मेहमानों में, और अगर पढ़ भी पाते हैं तो वो किस किस्म की नमाज़ें होती हैं, इसको हर एक खुद जानता है। देखिए, बहुत ज़्यादा थुड़दिला इंसान होता है जो किसी को ज़रा सी नेमत मिलने पे भूल जाए। आप अपने ऊपर लेके सोचें, आपके रिश्तेदारों में, फैमिली में कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा आपका फ़र्द है कि जो बस हैंड टू माउथ था, फिर अल्लाह उसको कोई खुशी दे और उस खुशी में उसकी चाल बदल जाए, उसकी बात का अंदाज बदल जाए, और वो किसी दूसरे को लिफ्ट ही ना कराए। हम ऐसे लोगों को अमूमन क्या कहते हैं? नौ दौलतियाँ, चार पैसे आ गए इनके घर में तो इनकी शक्ल ही बदल गई है। जब हम खुशियों में रब को भूलते हैं, तो फिर आप बताइए क्या उस वक्त अल्लाह के फरिश्ते हमारे बारे में ये नहीं सोचते होंगे, और हमें ये भी नहीं पता कि उस खुशी के बाद अगले ही दिन हमारे पास कितना बड़ा गम आने वाला है। तो इतना कमज़ोर इंसान अल्लाह को भूल कर जाएगा किधर? करना क्या है? अल्लाह से मदद मांगो, हर वक्त अल्लाह की ज़रूरत को अपनी ज़िंदगी में महसूस करो, उसके बगैर तुम बच नहीं सकते। वो ऐसी ज़ात है कि जो 24 घंटे तुम्हारे साथ है। चलो खैर है, वहाँ से निकले, अब आगे क्या होता है? अगली आयत को भी ज़रा देख लीजिए कि कोई आखिरी मौका नहीं था अल्लाह ताला के साथ मामले का, बल्कि आयत नंबर 68, अफ अमीन तुम, क्या तुम अमन में आ गए? ये लफ्जी तर्जमा मैंने किया, हालांकि इसका मानी क्या होता है? क्या तुम बेखौफ हो गए? क्योंकि जब कोई किसी चीज़ से बेखौफ होता है तो खुद को सिक्योर फील करता है ना। मानी इधर पता क्या, अफ अमीन तुम का, क्या तुम खुद को बहुत सिक्योर समझते हो? तुम बहुत महफूज हो? क्या तुम इस बात से खौफ हो गए हो? अई यख्सिफ बिकुम जानिबल बर्री, कि वो धसा दे तुम्हें कहीं खुश्की में, यानी समंदर में जाते ही तो वाकई एहसास होता है डूब जाएंगे, लेकिन क्या खुश्की पे तुम्हें रब नहीं पकड़ सकता? चलो समंदर में बैठे हो सकता है अल्लाह अल्लाह की तकरार हो जुबान पे, लेकिन खुशकी पर आते ही फिर अल्लाह की नाशुक्री करते हो, इससे मुंह मोड़ लेते हो? क्या तुम्हें इस बात से खौफ नहीं आता कि अल्लाह तुम्हें खुश्क जमीन के अंदर ही धसा दे? कारून को उसने को पानी में तो नहीं डुबोया था, जमीन फटी थी उसके लिए। क्या खुशकी पर लोगों को मौत नहीं आती? वो कहते हैं ना कि आसूदा साहिल तू है, मगर शायद ये तुझे मालूम नहीं, साहिल से भी मौजें उठती हैं, खामोश भी तूफान होते हैं। अचानक एकदम पकड़ आती है और इंसान चल पड़ता है, गोया कि तुम जमीन पर भी महफूज नहीं हो। पहली आयत में क्या था? पानी में महफूज नहीं हो। आयत के इस हिस्से में आ गया, खुशकी पे भी महफूज नहीं हो। अब एक तीसरी सूरत, औ युरसिला अलैकुम हासिबा, या वो तुम पर भेज दे कंकर बरसाने वाली तेज हवा। ये जो हासिबा का लफ्ज है ना, हसब से, हसब अरबी जुबान में कंकरी को कहते हैं, कंकरी छोटी छोटी जो होती हैं रॉक्स, और हासिब कहते हैं फेंकने वाली, वो बारिश जिसमें बर्फ के ओले हों, या वो आंधी जिसमें कंकरियां और पत्थर हों। आज के दौर में समझना तो सैंड स्टॉर्म, सहराओं में जब रेत का तूफान आता है ना तो आंखों के अंदर रेत चली जाती है। अल्लाह कहता है तुम बचकर कहाँ जाओगे, सुम्मा ला तजिदु लकुम वकीला, फिर तुम ना पाओ अपने लिए कोई बचाने वाला, कोई तुम्हारी वकालत नहीं करेगा, रोकने वाला, तुम्हारी मदद करने वाला। तो तुम तो देखो अल्लाह की पकड़ में हो। कितनी सजाएं हो गई, 3। अगली आयत पर चलिए, एक और भी दिखेगी। अम अमीन तुम, या तुम बेखौफ हो गए, बहुत रिलैक्स्ड हो, बहुत इंजॉय करते हो। अं यो ईदकुम फी ही तारत नुखरा, के इससे कि वो फेर ले जाए तुम्हें इसी समंदर में दूसरी बार। अब रिपीटिशन है, समंदर से बचा लिया तुम्हें तो क्या अब दोबारा किसी ट्रिप पे नहीं जाओगे, दोबारा कश्ती में नहीं बैठोगे, दोबारा समंदरी जहाज में नहीं बैठोगे? फिर क्या होगा, फयुरसिला अलैकुम कासिफम मिनर रीह, फिर भेज दे तुम पर हवा का तेज झक्कड़, जोरदार झक्कड़। ये जो कासिफन है ना, कसफ से है, तूफानी हवाओं को कहते हैं, तोड़ने वाली। कातिया तुन के मानी में, कता कहते हैं ना तोड़ने को, तो कातिया कासिफा एक ही साउंड है, तोड़ने वाली। वो हवा जो दरख्त तोड़ दे, थंडरस्टॉर्म होता है ना, यहां मुराद है वो हवा जो कश्ती को तोड़ दे। यानी अल्लाह जब इंसान को एक मौके पे छोड़ देता है तो इंसान ये कभी ना सोचे कि मैं जीत गया। हर जगह हर हाल में उसकी पकड़ हो सकती है। सूरत अल-अनाम 65 में हम पढ़ चुके, कुल हुवल कादिर, कह दो कि वो कादिर है, वो कुदरत रखता है, वो गलबे वाला है। सूरत रहमान में आप पढ़ते हैं, या माशरुल जिन्नी वल इंसी इन इस्ततातुम, ए जिन्नो इंस अगर तुम कर सको तो भागो, अल्लाह की पकड़ से भागो, लेकिन तुम नहीं बच सकोगे। लिहाजा फरमाया फयुग्रिकुकुम बिमा कफरतुम, सो वो तुम्हें गर्क कर दे तुम्हारी उस कुफर की पादाश में। थुम्मा ला तजिदु लकुम अलैना बिही तबिया, फिर न तुम पाओ अपने लिए हमारे खिलाफ इसकी वजह से कोई ताकुब करने वाला। तबिया लफ्ज बड़ा खूबसूरत है। दुनिया में जब कोई किसी को पकड़ लेता है या उसकी गलती से नुकसान हो तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं, या इन मुल्कों में तो बहुत मारूफ है, सू करना। ये तबीया जो है ना, ये सू करने वाला है। हम तुम्हें किसी तरह से भी पकड़ लें, है कोई जो हमसे इंतकाम ले, कोई हम पे सू करे, कोई हम पे मुकदमा करे। तबीया का जो लफ्ज है ना, पीछा करने वाला, इससे मुराद होता है पीछे करना। यानी तुम पे हम जो पकड़ करेंगे तो कोई वकील है तुम्हारी तरफ से जो हमारे खिलाफ मुकदमा लड़े, ये मुराद है। सच बताए है कोई? सब को अल्लाह तोड़ मोड़ के बिस्तर पे डाल दे, हम कुछ कर सकते हैं? आज हमारी जिंदगी में आप देखिए कि इतनी खुदा फरामोशी दिखती है आम हालात में, इल्ला माशाल्लाह जिसको भी अल्लाह बचा ले इस चीज से, वो और बात है। लेकिन हकीकत यह है कि इंसान अल्लाह के आगे बड़ा ही मजबूर है, इतना कमज़ोर है कि अल्लाह की ज़ात ने उसको दुनिया में ये जीने का हक दिया हुआ, जो हमारा हक नहीं था। हमने अल्लाह सुब्हान तआला को कुछ भी नहीं दिया कि वो हमसे इस तरह का मामला करें। लेकिन आप देखिए कि हम कितनी जल्दी मजबूर हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को बहाना बनाकर हम अल्लाह से मुँह मोड़ लेते हैं। बस तब आप देखिए कि हमारी ज़िंदगी में इस किस्म के मामले आते हैं कि हमारे पास चॉइसेस होती हैं लेकिन अमूमन हम लीस्ट मिनिमम पे रहते हैं। कितनी ही चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिस वक्त अल्लाह सुभान व तआला हमारी ज़िंदगी में ऐसे हालात ले आता है कि अगर हम थोड़ी सी अच्छी चीज़ चूज़ कर लें तो हमें अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा उसके फ़ायदे दे सकता है। चंद दिन पहले किसी ने एक वीडियो भेजी, मैं आपको दिखाती हूँ अगर मुमकिन हुआ। इसको पढ़ते हुए एकदम मेरे दिल में आ गया कि हम कितने मजबूर समझते हैं खुद को, लेकिन अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी हैं कि जिनको अल्लाह सुबहान ताला ने इतना आजमाया हुआ है। यानी एक हैंडीकैप शख्स है, उसके पाँव भी मुड़े हुए, चल सकता है लेकिन गिर जाता है चलते चलते, कद भी उसका छोटा है। हाथों से भी कोई चीज़ नहीं पकड़ सकता, लेकिन अभी आप देखेंगे कि किस तरह से वो मस्जिद में जाता है, फिर मस्जिद से ऊपर जाता है, फिर वो कैसे कुरान पढ़ता है। जब मैंने उसको देखा तो मैं सोच में पड़ गई और मैंने उस वक़्त खुद से पूछा, क्या मेरे पास कोई उज़र मौजूद है? क्या हकीकत में मैं अपने आप को इन छोटी छोटी चीज़ों में डालकर बस दफ़ा कितनी नेकियों से महरूम कर लेती हूँ जो सरासर मेरे काबू में होती हैं, जो सरासर मेरे इख्तियार में होती हैं। लेकिन बात यह है कि हम बहुत जल्दी हिम्मत हार देते हैं। और मैंने देखा है कि जिसको अल्लाह ने दुनियावी तौर पे ज़रा सा महरूम रखा होता है ना, उसका हौसला बहुत बड़ा होता है। अल्लाह की ज़ात जो है ना, ये किसी के साथ जुल्म नहीं करती। कुछ लोगों को जिस्मानी कमज़ोरियाँ मिलती हैं ना, तो अल्लाह ताला फिर उनको कुछ ना कुछ ऐसी ताकत भी दे देता है कि जिसके बाद वो दूसरों से भी आगे बढ़ जाते हैं। और जब ऐसे लोग कोई काम करते हैं, तो फिर मैं और आप, हम अपने आप को कैसे उन चीज़ों से रोक सकते हैं, ये हम सबको सोचना है। ख़ास तौर पर आप देखिए कि इन आयतों में बार बार आपको एक ही बात समझ आ रही होगी, पकड़ पकड़ अल्लाह की पकड़। अल्लाह तुम्हें पकड़ सकता है, तुम अल्लाह से भाग के कहीं नहीं जा सकते। अल्लाह की ज़ात ने तुम्हारे लिए क्या कुछ रखा हुआ है, लेकिन तुम उसकी नेमतों को सही तौर पे इस्तेमाल करना जानते ही नहीं हो। और जब हम अल्लाह ताला की ज़ात को पीछे डाल के जीते हैं ना, तो याद रखिए कि हम खुद अल्लाह ताला को मौके देते हैं कि आ तू हमें पकड़, तू हमारे लिए अपनी पकड़ का रास्ता आसान कर दे। फिर इसी तरह आप देखिए कि जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं कि जिनके पास बज़ाहर हमारे ख्याल में हमसे कम है, तो लेकिन आप फील करेंगे कि ऐसे लोग अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहकर बस दफ़ा वो नेकियां कमा जाते हैं जो हम इतनी नेमतों को पाने के बावजूद भी नहीं हासिल कर पाते। हम अपना मुहासबा करें, हर एक खुद से पूछे। पहले तो चंद सवाल खुद से करें, क्या वाकई मैं मजबूर हूँ? क्या वाकई मैं दुखी हूँ? क्या वाकई मेरे उज़र सच्चे हैं? कोई भी उज़र, देखिए आप अपने ऊपर भी ले रहे हैं ना, साथ ही साथ अपने बेटों पे भी लें, शौहर पे भी लें। फजर की नमाज़ से शुरू करते हैं, फजर के वक्त नमाज घर में पढ़ते हैं या देर से पढ़ते हैं, क्या उज़र शरई है? क्या हकीकत में इतने ही मजबूर हैं कि हम नमाज को देर से पढ़ें या घर में पढ़ें या हम उसको पढ़ें ही ना? जो पढ़ता नहीं उसका तो फिर हाल ही अल्लाह ताला रहम करेगा तो सही होगा, वरना तो उसका हाल किसी तरह भी दुरुस्त नहीं हो सकता। ये वो चीज़ें होती हैं जो हम सब की ज़िंदगी में तब्दीली लाती हैं। ये इंशाल्लाह हम छोटा सा एक क्लिप देखते हैं, बेसिकली इसके साथ आपको इंग्लिश में लिखा हुआ भी दिखेगा और बल्कि चले आवाज़ के बगैर भी देख सकते हैं, इसलिए कि इसको आपने ज़्यादा तस्वीरों से ही देखना है। ऑनलाइन वालों को भी इंशाल्लाह इसका लिंक बाद में भेज देंगे, लेकिन सिर्फ आप देखिए। मैं साहब बोलती रहती हूँ कि एक लड़का है या मर्द कह लीजिए, पाँव मुड़े हुए हैं, कैसे रिंगता हुआ आया है, और उसके बाद सीढ़ियों पे चढ़ते हुए उसने इस तरह जैसे बच्चे लेट के पेट के बल सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि व्हाट डू यू थिंक इफ आई इंट्रोड्यूस यू टू माई फ्रेंड इन यमन। ये जो एक स्पीकर हैं, ये अपने एक दोस्त से हमारा तारुफ कराते हैं जो यमन में रहता है। ही इज़ हैंडीकैप बट ही वॉक टू दी मॉस्क एवरी डे। ये अबाहत यानी हैंडीकैप है लड़का, लेकिन हर दिन मस्जिद में चल के जाता है। एंड समटाइम ही क्रॉल्स टू इट इन ऑर्डर टू रीच देयर। यानी बाज़ औक़ात इसको चलने की बजाय बच्चों की तरह क्रॉल करना पड़ता है। ये देखिए हम कितनी जल्दी मजबूर हो जाते हैं, खड़ा होने की सूरत में भी। अब जूते कैसे उतारा है वो, यानी वो खड़ा होकर जूता नहीं अपना उतार सकता। ही गेट टायर्ड्स बट ही डज नॉट मिस तकबीरात अल एहराम फर्स्ट तकबीर ऑफ द प्रेयर। यानी वो थक जाता है लेकिन वो पहली तकबीर जिसको तकबीर उला कहते हैं उसको मिस नहीं करना चाहता, उस वक्त मस्जिद में पहुंचना चाहता। ही विशेज टू प्रे फजर इन द मॉस्क बट हिज फैमिली डज नॉट अलाउ बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ कंडीशन। ये ख्वाहिश रखता है कि मैं फजर की नमाज जमात से पढूं, लेकिन इसके घर वाले इसको इजाज़त नहीं देते क्योंकि इसकी सेहत ऐसी है। है कोई उज़र हमारे पास? डू यू थिंक दिस इज़ ऑल ऑफ द मैटर। यानी वो कह रहे हैं कि सिर्फ क्या ख्याल है, बस मामला इतना ही है, تو معاملہ اتنا نہیں. یہ دیکھیے سب سجدے میں گئے ہیں, وہ بھی پوری کوشش کے ساتھ جس حد تک جا سکتا ہے سجدے میں. نو ہی از کین ٹو بی ان دا فرسٹ رو, ہی کمز ارلی اینڈ ریسائٹ دا قرآن. صرف نماز نہیں پڑھنی, مسجد میں پڑھنی ہے اور پہلی رو میں جانا ہے. وقت سے پہلے آتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے. اب اس کو آپ قرآن پڑھتے ہوئے دیکھیے گا. اینڈ ہی ڈز ناٹ اسٹاپ ہیئر بٹ آفٹر مغرب ایوری ڈے ہی گوز اپ دا اسٹیئر وتھ گریٹ ڈیفیکلٹی. یعنی مسجد میں جا کے قرآن بھی پڑھتا ہے پہلے, پھر مغرب کی نماز میں وقت سے پہلے جاتا ہے اور مسجد کے اوپر والے فلور میں جا کر کیا کرتا ہے یہ آپ دیکھیں گے. یہ دیکھیے اب یہ اوپر جا رہا ہے نا. اینڈ ہی کین ریچ دا سیکنڈ فلور. یہ دیکھیے دونوں ہاتھ اور پاؤں استعمال کر کے وہ مسجد کے اوپر والے فلور میں جا رہا ہے. وٹ از دیئر آن دا سیکنڈ فلور, کیوں جاتا ہے؟ ا قرآن میمورائزیشن سرکل. یعنی وہاں وہ جاتا ہے اس لیے کہ وہاں کچھ لوگ بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں اور یہ ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے. ہی پارٹیسپیٹنگ ان دا قرآن میمورائزیشن سرکل. یعنی وہاں جا کر یہ لوگوں کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہتا ہے. ایون دا ہی از پیرالائزڈ اینڈ اسپیک وتھ ڈیفیکلٹی بٹ ہی پشز ہمسیلف ٹو ڈو سو. بولنے میں بھی اس کو تکلیف ہے لیکن آپ دیکھیں گے ابھی اس کے ایکسنٹ سے کہ یہ کس طرح قرآن پڑھتا ہے. اینڈ ہی کین اٹر دا قرآن وتھ ہز وائس along with the hardship that comes with it. یہ دیکھیے اس کے پڑھنے کا انداز دیکھیں, یہ بول نہیں سک رہا صحیح, ہمارا عذر کی طرح ہے. ہم کب بچیں گے؟ میں سوچتی ہوں اللہ اتنی نعمتیں اور اتنے نخرے, اتنی تجھ سے ہماری منہ پھیرنے اور اعراض. یہ بھی تو انسان ہے نا, اب نماز پڑھ رہا سب کے ساتھ. کمال ہو آر یو, اس کا ٹیچر اب اس کو پوچھتا ہے. یہ کہتا ہے آل پریزز ٹو اللہ تعالیٰ, تعریف اللہ کی ہے. مے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پریزرو اینڈ بلیس یو, مطلب اس کو دعا دے رہا ہے. از یور ہاؤس کلوز اور فار, کہتا ہے تمہارا گھر قریب ہے یا دور. از اٹ دیئر, کدھر ہے. ڈو یو گیٹ ٹائرڈ وین یو گو, یہ پوچھ رہا ہے کیا تم تھک جاتے ہو جب ادھر آتے ہو یا جاتے ہو. ا لٹل بٹ, کہتے تھوڑا سا. مے اللہ سبحانہ وتعالیٰ گرانٹ, یعنی وہ کہتے تمہیں اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے, آمین. Do you come to the masjid every day? کہتے ہر دن آتے ہو. Do you arrive before the call for the prayer? کہتے وقت سے پہلے آتے ہو. It depends, sometime before or sometime after. وہ کہتا کہ depend کرتا ہے, کبھی پہلے آ جاتا ہوں کبھی بعد میں. اب دیکھیں اللہ کو پیار آئے گا. اس کے پاؤں دیکھیں. I see there is a pain on your foot. وہ کہتا ہے تو مجھے لگ رہا ہے تمہارے پیر میں درد ہے. اور دیکھیں خوش کتنا ہے. I see there is pain on your feet. This is due to rubbing of the floor on the ground. یعنی ویسی ہینڈی کیپ ہے لیکن کہتا ہے پاؤں جب زمین پہ چھلتے ہیں نا اس کی وجہ سے اسکن پہ زخم بڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. When he wears shoe it rips quickly. یعنی یہ دیکھیے اب یعنی پاؤں بھی چھل جاتے ہیں اس کے, ہاتھ بھی دیکھ لیجیے سیدھے نہیں ہیں. اب وہ شکریہ ادا کر رہا ہے اس کا. Come on, get up. Let me help you. Give me hand, please. آپ سوچیں ذرا, ہم بھی تو ایسے ہو سکتے تھے, ہمارے بچے بھی تو ایسے ہو سکتے تھے, ہمارے مرد بھی تو ایسے ہو سکتے تھے. یہ بھی تو انسان ہے نا. وہ کہہ رہا ہے کہ ماشاء اللہ تم فاسٹ ہو, یعنی تم تیز چل رہے ہو. ٹیچر اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے. صرف سوچنے کا مقام ہے, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ان باتوں پہ. کہتا ہے تم ایسا ریس کرنا چاہتے ہو, ایسے ہی اس کو خوش کر رہا ہے. After he pray Isha, he returns home. But there is a problem. اب عشاء کی نماز کے لیے وہ جب آتا ہے تو اس وقت کیا ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھ لیں. آپ سوچیں فجر سے لے کے مغرب تک اور اب عشاء. ہم ہو تو کہ بیٹھ جاؤ نا گھر میں, ایک تو پڑھ لی ہے نا, تو دوسری کی کیا ضرورت ہے. اندھیرا بہت سخت ہوتا ہے رات کو جب آتا ہے. And how will he be able to arrive? یہ کیسے وہاں پہنچے گا گھر میں. He hangs on any person leaving the mosque who can help reach. کسی کو بھی مسجد میں ساتھ لیتا ہے جو مسجد سے نکلتا ہے تاکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر یہ گھر آ سکے. With some hand light, ہاتھ میں بل پکڑ کے. کیوں کرتا ہے؟ It is because he loves what Allah wants. یہ اللہ کا گھر ہے, یعنی جس کو اللہ سے پیار ہے اس کو اللہ کے گھروں سے بھی پیار ہوگا. اس کے آگے پوئم ہے کہ my punishment for you is sweetness. And my distance from you is कूलनेस, यू आर टू मी लाइक, यानी उसके लिए अभी एक पोइम कह रहे हैं। तो आप खुद सोचें क्या सोच रहे हैं आप इस वक्त, शेयर करें थोड़ा सा। अब आप सब भी तो अपने ऊपर सोचेंगे ना, एक हैंडीकैप जा सकता है तो हम क्यों नहीं जा सकते, ये असल बात सोचना। जी आप सिस्टर शर्मा,
माँ जो सिखाया,
यानी इसकी माँ ने इसको मस्जिद की मोहब्बत ही, बिल्कुल देखें कि बच्चों को माँ ही ट्रेन करती हैं, अल्लाह जाने माँ थी या बहन थी, किसी ने तो उसको दिया ना। हम कितनी जल्दी अपने बच्चों पर रहम करते हैं, और ख़ास तौर पे आजकल समर, अल्लाह की बना, अल्लाह की बना, अल्लाह की बना, जो अमूमी तौर पे घरों का नक्शा समर में बन जाता है या छुट्टियों में बन जाता है, मैं कहती हूँ अल्लाह की बना। मुसलमान घर तो लगते ही नहीं है, और अगर वो आंखें बंद करके हमारे कहने पे जाके तीन की बजाय ढाई फर्ज पढ़ के सो भी जाते हैं फजर के, तो मोहब्बत कितनी है। ये माएँ होती हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी। ट्यूसडे को हम सुनेंगे कि इमाम बुखारी की माँ ने कैसे उनकी तरबियत की थी। आज तो मैं सोचती हूँ कि बंजर धरती है, आज की धरती माँ है, और जो फसल होती है ना वो औलाद होती है। जिब्रील ने कहा था कि औलाद में शरीक होऊंगा, अल्लाह ने कहा था हो जा, तो आज हम माँ को भी तो सोचने की ज़रूरत है ना, उतना लाड करें जितना सह सकें। और बस जब हम अपने बच्चों के लिए दुनिया की हर चीज़ रखने को तैयार होते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको खुश रखना है, उनको तकलीफ ना पहुंचे, उनको गम ना पहुंचे। आपको होमवर्क ये दे देती हूँ कि ये वीडियो हम दे देंगे आपको नेट पे, ये सिस्टर आयशा डाल देंगी इंशाल्लाह, बग़ैर किसी कमेंट के, दोस्त के, ज़बरदस्ती के, नॉर्मली एक अच्छे प्लेजेंट माहौल में बैठ कर सब घर वाले देखें, ठीक है। आपके कमेंट्स नहीं होने चाहिए ना, उससे पहले कम कम आई विल शो यू दिस दिस दिस, कुछ नहीं, बस बैठें बगैर उसमें आप हो ही ना, बल्कि अगर बेहतर है कि आप पास से उठ ही जाएं थोड़ी देर, यकीन करें शऊर जगाएं, अंदर का शऊर जागता है। आप कहते हैं कि एक अलार्म तो हमारा अजान के लिए बजता है ना, मोमिन के अंदर भी एक अलार्म होता है, वो खुद ब खुद बोल पड़ता है, चाहे घड़ी बोले ना बोले। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमें भी मोहब्बत हो जाए इतनी मस्जिदों से, नमाजों से, और हमारी मस्जिदें भी इसी तरह की आबाद हो जाएं कि वहाँ जाके वाकई अल्लाह याद आए।